समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, कार्यक्रम परिक्रमा में आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। हम आपके लिए लेकर आए हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं आकर्षिता सिंह और मेरे साथ है मेरी को होस्ट अनुजा कुमार। अनुजा, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार एंड हेलो आकर्षिता। आकर्षिता, मार्च इज रिनाउंड फॉर बीइंग अ वाइब्रेंट मंथ फिल्ड विद फेस्टिविटीज, पर्टिकुलरली एज इट ऑफन मार्क्स द अराइवल ऑफ स्प्रिंग, द हिंदू न्यू ईयर एंड द कल्मिनेशन ऑफ वेरियस रिलीजियस एंड कल्चरल सेलिब्रेशंस। द मेजर फेस्टिवल्स ब्रॉट द मंथ टू अ कलरफुल एंड स्पिरिचुअल क्लोज, व्हाइल अर्ली इन द मंथ द फेस्टिवल ऑफ कलर्स It set the festival tone for the entire month. And then came Ugadi, Gudi Padwa, and the traditional New Year time for Maharashtra and all of us. Then it was the Navratri time. The holy month of fasting also ended with Eid al-Fitr, bringing prayers, feasting and community celebrations. Then we celebrated Ram Navami, marked by processions, bhajans and intense devotion across India. Hanuman Jayanti is on 30th of March, celebrated with special prayers at temples across India, and the month will be ending with Mahavir Jayanti on 31st of March. So it was a very power-packed, festival-packed month of March. So many festival and celebrations make life full of positive beliefs and bonding, keeping us away from the fear of war and conflicts, isn't it, Akarshita?
सच है,
अगर ये कितना हम लोगों को उम्मीद से बांधती
है, बहुत ज्यादा। इनफैक्ट अगर आप याद करें, कोविड के टाइम पे भी लोगों ने रामायण और महाभारत इसीलिए देखना शुरू किया था क्योंकि ये चीजें एक उम्मीद बांधती हैं।
राइट, एंड शैल वी नाउ बिगिन विद द न्यूज हेडलाइंस, आकर्षिता?
जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पश्चिम एशिया की स्थिति ने भारत की ऊर्जा जरूरतों के लिए चुनौती उत्पन्न की, इस चुनौती से सफलता से बाहर निकलने का विश्वास प्रकट किया।
In his Mann Ki Baat program on Akashwani, Prime Minister urges people not to be misled by rumors and trust information given by the government.
तेहरान में प्रमुख सैन्य ठिकानों पर इसराइल के हमलों और खाड़ी में ईरान की मिसाइल और ड्रोन हमलों से संघर्ष बढ़ा। पश्चिम एशिया में अमरीका ने 3,500 से अधिक नौसैनिक भेजे।
And in IPL cricket, hosts Mumbai Indians to take on Kolkata Knight Riders this evening. And it's time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. And today we are talking about the Indian bustard conservation. Today we bring you a powerful story from the grasslands of India, a story of resilience, innovation and hope. A story that reminds us that even on the brink of extinction, life can find a way. In Gujarat's Kutch district, something extraordinary has happened. For the first time in nearly a decade, a chick of the critically endangered great Indian bustard, known locally as the ghorad, has been born in the wild grasslands of Abdasa. This isn't just a birth, it's a breakthrough.
In a significant milestone for wildlife conservation, a chick of the extremely rare great Indian bustard, locally known as ghorad, has been born in Gujarat's Kutch district after nearly a decade. The birth has been reported from the grasslands of Abdasa and is being seen as a major success in conservation efforts. Union Minister for Environment, Forest and Climate Change, Bhupendra Yadav, also congratulated the forest departments of Gujarat and Rajasthan, along with the Wildlife Institute of India, for their coordinated efforts. For Parikrama, Ashraf Nathwani, Akashwani News, Bhuj.
ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसे स्थानीय भाषा में गोडावण या सोन चिरैया भी कहा जाता है, भारत का सबसे गंभीर रूप से संकटग्रस्त पक्षी है। ये मुख्य रूप से राजस्थान और गुजरात के शुष्क घास के मैदानों में पाया जाता है और वर्तमान में इसकी वैश्विक आबादी 150 से भी कम रह गई है। और अनुजा, अगर हम बात करें तो 8 साल पहले पिछले हम बात करते थे कि किस तरीके से ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो एक्सटिंक्ट हो सकती है या इंडेंजर्ड स्पीसीज में आती है, और आज इसकी तादाद इतनी कम हो गई है। कहीं ना कहीं हमें अपने प्रकृति पे, हमें अपने इन्वायरमेंट पे बहुत फोकस करने की जरूरत है। और अगर बात करें इस पक्षी की, तो इस पक्षी की कहानी, जिसने कभी घास के मैदानों पर राज किया था, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कोई साधारण पक्षी नहीं है। ऊंचा कद, राजसी ठाट और उड़ने वाले सभी पक्षियों में से सबसे अधिक वजनदार होने के कारण ये कभी भारत के विशाल सूखे घास के मैदानों और झाड़ियों वाले इलाकों में आजादी से घूमता था। अपनी लंबी टांगों, क्षैतिज शरीर और गरिमा में चाल के साथ ये खुले वन्य जीव का एक प्रतीक था, लेकिन आज ये विलुप्त होने की कगार पर खड़ा है। और कहीं ना कहीं हमें भी खुद से ये प्रश्न पूछना चाहिए कि ऐसा हमने क्या किया है कि ये जो इतने खूबसूरत पक्षी हैं, इतने खूबसूरत जो है ढेर सारे स्पीसीज हैं, ये एक्सटिंक्ट क्यों हो रहे हैं, इंडेंजर्ड क्यों हो रहे हैं?
एग्जैक्टली, बैक इन 2011 अराउंड 250 इंडिविजुअल्स वर एस्टिमेटेड टू सर्वाइव, बाय 2018 दैट नंबर हैड ड्रॉप्ड टू नियरली 150। इवन मोर अलार्मिंग, द स्पीशीज हैज वैनिश्ड फ्रॉम ऑलमोस्ट 90% ऑफ इट्स हिस्टोरिकल रेंज। It is now classified as critically endangered on the global conservation scale and protected under the Indian Wildlife Protection Act 1972. The bird's survival has become a national priority now. So what pushed this magnificent bird to the brink? The reasons are complex, as you were saying, Akarshita, and deeply tied to human development. In the past, the bustard was heavily hunted for food and even for sport. While such practices have reduced, illegal poaching still poses a threat, but perhaps the greatest danger is habitat loss.
घास के मैदानों को, जिन्हें अक्सर बंजर जमीन समझ लिया जाता है, अब खेती की जमीन में बदल दिया गया है, खासकर इंदिरा गांधी नहर जैसी सिंचाई परियोजनाओं के कारण। जैसे जैसे पानी सूखे इलाकों तक पहुंचा और खेती का विस्तार हुआ, और बस्टर्ड पंछी जो है इसने अपना घर खो दिया। आधुनिक बुनियादी ढांचे ने नए खतरे पैदा कर दिए। रेगिस्तानों में फैली बिजली की लाइन, ये सबसे बड़ा खतरा है इस जो है पक्षी के लिए, और सड़कों पर बढ़ता जाल, और यहां तक कि नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं भी जो बड़े बड़े खुले इलाकों को घेर लेती हैं। इन बदलावों के कारण जानलेवा टक्करें हो रही हैं और सुरक्षित आवास सिकुड़ते जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं हम जब बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी की, तो इसीलिए करते हैं कि किस तरीके से हम विकास को आगे ले जाएं, लेकिन विकास के साथ साथ प्रकृति को भी कोई नुकसान ना पहुंचे।
Right, and so what was the result of all these things, all these developments? A silent disappearance. But in the face of crisis, conservationists refused to give up. In Kutch, a major challenge stood in the way. There were no male bustards left. That meant eggs laid by females were unfertilized and no new chicks could be born. So the Gujarat State Forest Department came up with an innovative solution. They called it Operation Egg Transfer. A fertilized egg was sourced from a breeding center in Rajasthan, carefully placed inside a portable incubator. It began a 19-hour journey by road, across states, across landscapes, carrying with it the fragile hope of a species.
और 22 मार्च को एक बहुत ही अद्वितीय घटना घटी, जब वन अधिकारी अबदासा के घास के मैदानों में वे पहुंचे और वहां एक बेहद नाजुक और सटीक ऑपरेशन में उन्होंने एक मादा बस्टर्ड के घोंसले में रखे एक बिना फर्टिलाइज हुए अंडे को एक फर्टिलाइज हुए अंडे में बदल दिया। और फिर उन्होंने इंतजार किया। दिन गुजरते गए, मादा बस्टर्ड इंसानी दखल से बेखबर उस अंडे को स्वाभाविक रूप से सीती रही। और फिर 26 मार्च को एक छोटी सी दरार दिखाई दी, एक चूजा बाहर निकला, स्वस्थ और वो भी जिंदा, अस्तित्व का एक प्रतीक। लगभग 10 साल बाद कच्छ में एक नई पीढ़ी की शुरुआत हुई।
ऑफ कोर्स दिस सक्सेस डिडंट हैपन इन आइसोलेशन, इट वाज द रिजल्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन, एक्सपर्टीज एंड डेडिकेशन। स्टेट फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट मिनिस्टर अर्जुन मोदवाडिया described it as a proud achievement, a shining example of how modern conservation techniques can change outcomes. Union Minister Bhupendra Yadav congratulated the forest departments of Gujarat and Rajasthan, along with the Wildlife Institute of India, for their collaborative efforts. Together, they turned a challenge into a possibility.
और भविष्य के लिए इसका क्या मतलब रहेगा अनुजा, सिर्फ ये बताना कि हमने एक चूजे को बचा लिया, आई थिंक यही इनफ नहीं होगा, हमें और भी बहुत ढेर सारी जो है एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को अब भी बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसकी आबादी अब भी खतरनाक हद से बेहद कम है, इसके रहने की जगह भी बहुत कम है, और फिर भी ये एक पल बहुत बड़ा साबित करता है, अगर हमने एक चिड़िया को बचाया या एक पंक्षी को बचाया तो शायद हम हजारों को बचा सकें। और संरक्षण का मतलब सिर्फ सुरक्षा करना नहीं होता बल्कि इसमें कुछ नया भी करना शामिल होता है। इसका मतलब है कि हालात के हिसाब से ढलना, नए प्रयोग करना और मिलकर काम करना। और सबसे जरूरी बात यह है कि हमें एक उम्मीद है कि हम इसको बचा ले जाएंगे और कहीं ना कहीं विकास के साथ हम इसके लिए भी कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढ लेंगे इसको बचाने के लिए।
एंड टुडे वी आर ऑल्सो डाइविंग इनटू अ टॉपिक दैट अफेक्ट्स एवरी ब्रेथ वी टेक एंड एवरी मील वी ईट, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। बट फर्स्ट, व्हाट एग्जैक्टली इज बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी सिंपली मीन्स द वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, फ्रॉम टाइनी माइक्रोब्स टू जायंट एलिफेंट्स, फ्रॉम लश फॉरेस्ट्स टू डीप ओशंस। Every species, big or small, plays a role in keeping our planet balanced. Imagine a world without birdsong, no buzzing bees, no green trees. Sounds empty, right? That's why conservation of biodiversity is so important.
और सवाल ये है कि हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए? तो अनुजा, कभी कभी ऐसे परिस्थितियां आ जाती हैं हमारे जीवन में जब हम बहुत दुखी होते हैं, बहुत उदास होते हैं, तो कभी कभी हम पहाड़ों पे चले जाते हैं या नदी, झरने या कहीं भी ऐसे जाते हैं और हमें बहुत सुकून मिलता है। क्यों मिलता है? शायद इसीलिए क्योंकि हम प्रकृति के साथ अस्तित्व में एक बंधे हुए हैं। तो अगर हम जैव विविधता की बात करें, इसके संरक्षण की बात करें, तो ये पारिस्थितिकी तंत्र को स्थिर करती है क्योंकि हर प्रजाति की एक भूमिका होती है और एक भी टुकड़ा एक पहेली की तरह होता है कि इसमें से एक भी पजल आप हटा दे तो वो पूरा जो है उसका ढांचा जो है वो गिर जाता है या टूट जाता है। और अगर बात करें तो ये मानव अस्तित्व को भी सहारा देती है। आप भोजन देख लें, दवाएं देख लें, साफ पानी देख लें, जो ग्लेशियर से पानी आते हैं, सब कुछ हमें प्रकृति से मिल रहा है। ये आपदाओं से भी हमारी सुरक्षा करती है। आप देखें, जहां पे बहुत ढेर सारे पेड़ पौधे होते हैं वहां पे जो भूस्खलन की समस्या होती है या फिर ड्रॉट होते हैं या फिर जो है बाढ़ आता है, वो कम आता है ऐसी जगहों पे जहां पे प्रकृति अपने सर्वश्रेष्ठ या उत्कृष्टतम पे रहती है। और अगर बात करें तो सांस्कृतिक और सौंदर्य परक महत्व भी है क्योंकि प्रकृति कला, परंपराओं और यहां तक कि हमारी मन की शांति को भी प्रेरित करती है, जैसा कि हमने बात किया। और ये हमारे पूरे एक होलिस्टिक अप्रोच, एक बोलते ओवरऑल डेवलपमेंट से जुड़ी हुई है।
बट हियर टू इज अ रियलिटी चेक आकर्षिता, बायोडाइवर्सिटी इज अंडर थ्रेट। Deforestation, pollution, climate change and overuse of resources are putting countless species at risk. Every time a species disappears, it's like losing a chapter from Earth's story forever. So what can we do? We can plant trees and protect green spaces. We can reduce, reuse and recycle, save water and energy, support wildlife protection efforts, spread awareness, because change starts with knowledge.
और अच्छी खबर ये भी है कि अब भी बहुत देर नहीं हुई है, अगर हम मिलकर एक साथ काम करें तो हम अपनी प्रकृति की सुरक्षा कर सकते हैं, इसे बचा सकते हैं। और क्योंकि हम प्रकृति से अलग नहीं हैं, और जब हम ये सोचेंगे कि प्रकृति के साथ हैं तो कहीं ना कहीं हम उससे जुड़ाव महसूस करेंगे और उसको सुरक्षित भी रख सकेंगे।
As you go about your day, think about the grasslands, often overlooked, often undervalued. Think about the silent struggles of species like the ghurad, and think about what this small chick represents. A second chance, a reminder that even in a rapidly changing world, we can still make space for nature. Stay aware, stay inspired, and remember, every life matters.
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है।
इलेक्शन कमीशन कंडक्ट्स एक्सटेंसिव अवेयरनेस प्रोग्राम्स फॉर द असेंबली इलेक्शंस दिस टाइम। अ रिपोर्ट ऑन दिस।
यस, द केरला असेंबली इलेक्शंस हीट अप। द इलेक्शन कमीशन इज ऑर्गेनाइजिंग एक्सटेंसिव अवेयरनेस प्रोग्राम्स अमंग द वोटर्स। द कमीशन्स एक्टिविटीज आर फोकसिंग ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ वोटिंग अमंग वेरियस सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन विद अ टारगेट ऑफ 85% पोलिंग। The district election department organized special programs for the people of the coastal areas of Kozhikode the other day to create awareness about voting. Election officials personally visited Pudiyappa, an area inhabited by fishermen, and explained the need to vote and the workings of the voting machines. This made a great impression on the people. Apart from this, similar activities were organized in the hilly villages of the district. The program was held in Kodancheri, a hilly region for people living in areas inhabited by tribals and scheduled castes. In addition, ahead of the assembly elections, mock elections were organized at various centers under the leadership of the district administration. As part of the sweep campaign, mock elections were organized in tribal pre-matric hostels and training centers for differently abled students in the district. The aim of the mock election is to make people aware of the importance of the exercising their voting rights and participating in voting and to introduce them to the electoral process. As part of the program, students of scheduled tribe pre-matric hostels wrote letters to their parents highlighting the importance of voting. In connection with this, a magic show and cultural programs were staged. Hostel teachers, caretakers, interns of the district collector, etc. led the program. Suresh VK for Parikrama, Akashvani News, Kozhikode.
गर्मियों का मौसम शुरू होते ही महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र के समंदर किनारे पर स्थित विल्लास गांव तैयार होता है विल्लास कछुआ महोत्सव के लिए। ऑलिव रिडले कछुओं के अनगिनत बच्चे इसी समय अंडों से बाहर निकलकर समुंदर का रुख करते हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
फरवरी से अप्रैल तक चलने वाला ये महोत्सव पर्यावरण प्रेमियों और पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण बन चुका है। लेकिन इस महोत्सव के बारे में जानने से पहले आइए समझते हैं कि ऑलिव रिडले कछुए पारिस्थितिकी तंत्र में क्या भूमिका निभाते हैं। सुनते हैं विलास कछुआ महोत्सव के संस्थापकों में से एक मोहन उपाध्याय से।
समुद्री कछुए समुद्र में मरे हुए जलचर जीवों को या मछलियों को खाकर पानी साफ रखने का काम करते हैं। साथ ही साथ ये समुद्र के एल्गे और घास को भी खाते हैं। जेलीफिश को खाकर जेलीफिश के नंबर को कंट्रोल में रखने का महत्वपूर्ण काम ये समुद्री कछुए यानी ऑलिव रिडले करते हैं।
करीब दो दशक पहले तक कोंकण के समुद्री किनारों पर ये ऑलिव रिडले कछुए अंडे देने आते तो थे, लेकिन इनमें से बहुत से अंडों से बच्चे बाहर आकर समंदर तक पहुँच ही नहीं पाते थे। इसके पीछे की वजह क्या थी और कैसे ये बात विलास कछुआ महोत्सव की प्रेरणा बनी, बता रहे हैं मोहन उपाध्याय।
करीब 22 साल पहले की बात है, महाराष्ट्र के कोंकण में काफी ज्यादा कछुए के अंडे समुद्र के किनारे पर पाए जाते थे, लेकिन गांव के कुछ लोग उसे चुरा कर खाया करते थे, बेचा करते थे या फिर अपने घर में पाले हुए बैलों को ये खिलाया करते थे, क्योंकि इसमें विटामिन बहुत ज्यादा होता है। और यही एक अहम वजह थी कि उनका संरक्षण और संवर्धन करना और इन समुद्री कछुओं को बचाना।
ऑलिव रिडले कछुओं के संरक्षण का ये काम कैसे किया जाता है और इसमें गांव के लोग कैसे भाग लेते हैं, इसके बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं मोहन उपाध्याय।
ये सारा काम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर शुरू रहता है। नवंबर से मार्च ये उन कछुओं का अंडे देने का एक वक्त होता है, जब गांव के लोग किनारों पर जाकर निगरानी करते हैं और जब भी उन्हें ऐसे अंडे मिलते हैं उन्हें एक जाली के अंदर लाकर महफूज रखे जाते हैं। करीब 45-55 दिन बाद उसमें से बच्चे पैदा होकर रेत पर बाहर निकलते हैं और उन्हें सेफली पानी तक छोड़ा जाता है।
पिछले 22 सालों से चल रहे इस अभियान के क्या सकारात्मक परिणाम यहाँ दिख रहे हैं, हमें बता रहे हैं फिर से एक बार मोहन उपाध्याय।
पिछले 22 साल से महाराष्ट्र में समुद्री कछुओं को बचाने का काम जो अलग अलग गांवों में अलग अलग जिलों में चल रहा है, अब वो वहां तक सीमित न रहकर शहरों में रहने वाले लोगों तक वो पहुंच चुका है। इसमें नतीजे में शुरुआत के दिनों में जो संख्या में समुद्री कछुए पाए जा रहे थे, आज उसकी संख्या काफी अच्छी तरीके से बढ़ते हुए दिखाई दे रही है और यही सफलता है इस कंजर्वेशन के एक्टिविटीज की।
ऑलिव रिडले कछुओं का जीवन चक्र अबाधित रखने के उद्देश्य से शुरू हुआ ये काम अब देश के सबसे बड़े पर्यावरण उत्सवों में से एक बन चुका है और प्रकृति के साथ हाथ में हाथ मिलाकर चलने का एक अनूठा उदाहरण हमारे सामने पेश कर रहा है। परिक्रमा के लिए मुंबई से अंकिता आपटे।
मूविंग ऑन, Let's go to Keralam now, where Palm Sunday, locally known as Osana Nijayar, was observed with deep devotion across the state, marking the beginning of the Holy Week. We have more on this from our Thiruvananthapuram correspondent.
From early morning, churches across Keralam came alive with special prayers, hymns and processions on the Osana Nyayar. Devotees carried leaves, recalling the entry of Jesus Christ into Jerusalem. The day, also known as Kuruthola Perunal, saw believers taking part in the blessings of palm fronds, followed by processions around church premises, get expressions of faith that have been passed down through generations. With Palm Sunday, the faithful enter the final week of Lent, leading to Good Friday and culminating on Easter, a journey from sacrifice to hope. Midhi M. Palluruthi, Akashvani News, Thiruvananthapuram.
अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल अनुजा से।
In IPL cricket, Mumbai Indians will take on Kolkata Knight Riders at the Wankhede Stadium in Mumbai this evening. The match will begin at 7:30 p.m. Last night, in the opening match of the 19th season, hosts Royal Challengers Bengaluru defeated Sunrisers Hyderabad by 6 wickets.
अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
29 मार्च 1857 को महान स्वतंत्रता सेनानी और साहस की प्रतिमूर्ति मंगल पांडे ने चर्बी लगे हथियारों के इस्तेमाल के खिलाफ अपने साथियों में विद्रोह का बिगुल फूंका था।
ब्रिटिश सेना के सार्जेंट मेजर ने मंगल पांडे की गिरफ्तारी का आदेश दिया, लेकिन भारतीय सैनिकों ने इसे मानने से इनकार कर दिया। इसे लेकर हुई झड़प में मंगल पांडे ने सार्जेंट मेजर पर हमला कर दिया तथा उसे और एक लेफ्टिनेंट को घायल कर दिया। कमांडिंग ऑफिसर जनरल हेसे की उपस्थिति में अंग्रेज अधिकारियों और उनके सुरक्षा प्रहरियों ने मंगल पांडे को घेर लिया।
मंगल पांडे समझ गए कि उनका अंत निकट आ गया है। उन्होंने अपने साथियों को मदद के लिए पुकारा, लेकिन उधर से तुरंत कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर खुद को गोली मार ली। मंगल पांडे की चोट जानलेवा साबित नहीं हुई और उन्हें अस्पताल भेज दिया गया।
मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें ईश्वरी प्रसाद के साथ फांसी की सजा सुनाई गई। मंगल पांडे को 8 अप्रैल और ईश्वरी प्रसाद को 21 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। हम मंगल पांडे और ईश्वरी प्रसाद को सादर नमन करते हैं। आज हम स्वतंत्रता सेनानी लक्ष्मण नाइक का भी स्मरण कर रहे हैं, जो 29 मार्च 1943 को शहीद हुए थे। उन्होंने उड़ीसा में कोरापुट जिले में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था और जनजातीय समुदाय को बंधुआ मजदूरी जैसे अमानवीय चलन के खिलाफ संघर्ष के लिए एकजुट किया था। आदिवासी लोग उन्हें मलकानगिरी का गांधी कहा करते थे।
लक्ष्मण नाइक का जन्म 22 नवंबर 1899 को ओडिशा के मलकानगिरी में हुआ था। भुइया जनजाति के लक्ष्मण नाइक राष्ट्रीय आंदोलन से प्रभावित थे। वे 1936 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के सक्रिय सदस्य बन गए। उन्होंने खादी को बढ़ावा दिया और लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन से अवगत कराया। 1937 में कांग्रेस का मंत्रालय गठित होने के बाद स्वतंत्रता आंदोलन में कोरापुट के जनजातीय समुदाय की भागीदारी को एक नया विस्तार मिला।
लक्ष्मण नाइक ने 1942 में कोरापुट के मातिली में कांग्रेस की प्राथमिक समिति के अध्यक्ष का प्रभार संभाला। उन्होंने जनजातीय लोगों को सड़क और पुल निर्माण तथा स्कूलों की स्थापना जैसे विकास के कामों में लगाया। उन्होंने शोषण, दमन और यातना के खिलाफ संघर्ष को भी मजबूत किया।
1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 21 सितंबर को लक्ष्मण ने मलकानगिरी जिले में माथली पुलिस थाने तक जनजातीय समुदाय की रैली का नेतृत्व किया। इसका उद्देश्य थाने के भवन पर कांग्रेस का झंडा फहराना था। भीड़ पर पुलिस की गोलीबारी में 5 लोग घटनास्थल पर ही मारे गए और 17 घायल हो गए। विरोध प्रदर्शन में मुख्य भूमिका के लिए घायल लक्ष्मण को गिरफ्तार कर लिया गया
और फिर उन पर मुकदमा चलाया गया और मौत की सजा सुनाई गई। 29 मार्च को सूरज की किरण फूटने के साथ ही लक्ष्मण साहस और निर्भीकता से बरहामपुर कारावार में फांसी के फंदे की ओर बढ़े। उनके अंतिम शब्द थे,
यदि सूर्य सत्य है और चंद्रमा भी, तो उतना ही बड़ा सत्य ये भी है कि भारत माँ स्वतंत्र होगी।
जेल परिसर में ही लक्ष्मण नाइक का अंतिम संस्कार कर दिया गया। वे भारत माँ को स्वतंत्र होता देखने के लिए जीवित नहीं रहे, लेकिन नायकों के महानायक के रूप में भारतीयों की स्मृति में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। इस महान जनजातीय नेता और स्वतंत्रता सेनानी लक्ष्मण को हमारा शत शत नमन।
आज हम शहीद अवतार मिश्र और मखदूम बख्श को भी याद कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जौनपुर के इन नायकों ने 1857 में स्वतंत्रता के प्रथम संघर्ष में भाग लिया था। 20 मार्च 1858 को वे जौनपुर के सोंथ में तहसीलदार के लोगों के खिलाफ लड़े। उन्हें पकड़ लिया गया और 29 मार्च को फांसी पर लटका दिया गया। स्वदेश की माटी के इन महान सपूतों को हमारा नमन।
जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, और उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, तू जिस जगह जागा सवेरे उस जगह से बढ़ के सो। ये पंक्तियां हैं भवानी प्रसाद मिश्र की। आज उनकी जयंती है। भवानी प्रसाद मिश्र दूसरे तार सप्तक के प्रमुख कवि हैं। मिश्र जी विचारों, संस्कारों और अपने कार्यों से पूर्णतः गांधीवादी थे। गांधीवाद की स्वच्छता, पावनता और नैतिकता का प्रभाव और उसकी झलक भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं में साफ देखी जा सकती है। उनका प्रथम संग्रह गीत परोश अपनी नई शैली, नई उद्भावनाओं और नए पाठ प्रवाह के कारण अत्यंत लोकप्रिय हुआ।
Known as a soulful voice, he won the Sahitya Academy Award in 1972 for Buni Hui Rassi and famously penned Geet Farosh. His work often focused on everyday life, profound humanism and satire against power structures. Often remembered for his immense contribution to Hindi Sahitya literature, his poems are still recited to critique societal and political herd mentalities. Beyond poetry, he was an editor and a lyricist for films like Swayam Siddha in the year 1949 and wrote dialogues for Angulimal in 1960. We have selected a song for you from the movie Swayam Siddha, for which he wrote the lyrics.
ये राही मन चाही करने, ये राही मन चाही।
We also pay tribute to the legacy of the celebrated Hindi poet, story writer, novelist and essayist, best known for his immense contribution to nationalistic literature and his deeply compassionate Gandhian-inspired writing. I'm talking about C.R. Ram Charan Gupta. Younger brother of the famous Rashtra Kavi Maithili Charan Gupta, C.R. Ram Charan Gupta carved out his own distinct niche in Hindi literature. His writing was marked by purity of language and intense emotional depth. Of course, he was deeply influenced by Gandhian philosophy, and his work often focused on everyday life, profound humanism and satire.
आज भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता उत्पल दत्त की जयंती है। उन्होंने हिंदी और बांग्ला फिल्मों में अपनी अमिट छाप छोड़ी। एक अभिनेता के रूप में उत्पल दत्त ने लगभग हर किरदार को निभाया। हिंदी पर्दे पर कभी पिता तो कभी चाचा, कहीं डॉक्टर तो कहीं सेठ, कभी बुरे तो बहुधा अच्छे बने उत्पल दा को दर्शक किसी भी रूप में नहीं भूल सकेंगे। उत्पल दत्त को अधिकतर एक हास्य अभिनेता के रूप में याद किया जाता है। वर्ष 1989 की सुपरहिट फिल्म गोलमाल में उनके द्वारा निभाया गया भवानी शंकर का शानदार हास्य अभिनय आज भी लोगों द्वारा खूब याद किया जाता है।
सुन, मैं बनारस गया था शास्त्री जी के पास। क्या ज्योतिषी हैं, भाग्य तो ऐसे पढ़ते हैं जैसे आकाशवाणी वाले समाचार पढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि भाग वाली कोठी का मामला इस बार हम जरूर जीतेंगे।
अरे तो आपको तो फिर इलाहाबाद जाना होगा।
नहीं, मेरे जाने की क्या जरूरत है, राम प्रसाद जो जा रहा है बड़ा काबिल लड़का है। और हाँ, मैंने उनको तेरी और प्रतापगढ़ के बाबू कृष्णानंद राय की बेटी की कुंडली भी दिखाई। उन्होंने कहा बहुत अच्छी जोड़ी है, शीघ्र शादी कर दो।
भैया
That was given a Sangeet Natak Academy Award for the Best Playwright for the play Ferrari Forge and the Sangeet Natak Academy Fellowship for Lifetime Contribution to Theatre in 1990. Of course, he got a National Film Award for Bhuvan Shom as well. And today we also wish a birth anniversary. We remember Jagdeep. He was a legendary Indian actor and a comedian of yesteryears. He began his cinematic journey as a child artist but became a household name with his unforgettable portrayal of Surma Bhopali in the movie Sholay in 1975.
Yaar, aaj meri bhai aankh bahut phadak rahi hai.
Are bhai aankh ka phadakna to bahut shubh hota hai. Charon taraf se khushiyon ke samachar milenge.
Are kahe ke samachar milenge khushiyon ke. Mere liye to aakhri khushi ka din wo din tha जिस दिन मैं पाप बना था वो दिन है और आज का दिन है। मेरे लायक बेटे प्रेम ने मुझे खुश होने का मौका ही नहीं दिया। कमाऊ मैं, उड़ाए वो।
Of course, his versatility left an indelible mark on Indian cinema. His legacy as an actor who brought joy and laughter continues to live on.
जी हाँ, और उन्होंने 1951 में जगदीप को फिल्म अफसाना में काम करने का मौका मिला, जो उनकी पहली फिल्म भी थी। और श्रोताओं, अब समय हो चला है तो अनुमति दीजिए आकर्षिता और अनुजा को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की। नमस्कार, नमस्कार।